उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड
जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, अवास्तविक होते अवास्तविक होते ही हुए भी वास्तविक लगते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के मोह रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करने वाले हैं। मैं उनका उस लिए ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। अर्थात श्रीमद् भागवत का शुरू में ये विचार हुआ है क्यों भगवान की ध्यान करना चाहिए। ध्यान का मतलब है मन, मन की द्वारा चिंतन। मन स्वाभाविक रूप से ही चिंता करता है, ये चिंतन मन का स्वाभाविक वृत्ति है। तो ये मन के द्वारा जब चिंता हो रहा है तो यह श्रीमद् भागवत के शुरू में वैसे वर्णन कर रहे हैं क्यों हमें भगवान का चिंतन करना है। वैसे तो हम सब भौतिक जगत के बारे में, भौतिक जगत के विषय में चिंतन करते हैं, परंतु भौतिक जगत के बारे में चिंतन करने से ये भौतिक वस्तु के प्रति, भौतिक जगत के प्रति हमारा आसक्ति बढ़ जाता है। जहां हमारा चिंतन होता है वहां पर हमारा आसक्ति रहता है। ये भौतिक जगत का चिंतन होने से, भौतिक जगत का वस्तु के चिंतन होने से ये भौतिक जगत के प्रति हमारा आसक्ति बढ़ता जाता है। परंतु अगर हम भगवान के बारे में चिंतन करते हैं तब भगवान के प्रति हमारे आसक्ति बढ़ता रहता है। तो यह वर्णन हो रहा है क्यों भगवान के बारे में चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। पहले व्यासदेव जी ने कह रहे हैं कि भगवान सर्वव्याप्त है और भगवान सब कुछ विषय में अवगत है, भगवान जानते हैं सब कुछ विषय में। ये भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है। सत्य का ध्यान करने से वास्तव के प्रति हमारे आसक्ति बढ़े, और असत्य का बारे में अगर हम चिंता करेंगे तो क्या होगा, हम माया के पीछे पड़े रहेंगे। जहाँ वास्तविक जो वस्तु वास्तव नहीं है, जहाँ वास्तव ज्ञान प्राप्त हम नहीं हो, इसीलिए भगवान के बारे में ध्यान करना चाहिए क्योंकि भगवान परम सत्य है और भगवान समग्र जगत का, संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति मतलब सृष्टि पालन और संहार का कारण है। केवल कारण ही नहीं, भगवान सर्व कारण का आदि कारण, जितने सारे कारण है सारे कारण का आदि कारण है भगवान। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन और संहार के कारणों के आदि कारण है और भगवान प्रत्यक्ष रूप में और परोक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में जगत से अवगत रहते हैं। ये संसार के सारे विषय में कहां क्या हो रहा है उस विषय में भगवान पूर्ण रूप से अवगत है। भगवान सब कुछ जानते हैं, ये संसार की, इस भौतिक जगत के कोने कोने में क्या हो रहा है और इस जगत का हर जगह में हर व्यक्ति का क्या हो रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, इन मन में क्या चिंतन हो रहा है, ये सारे विषय में भगवान पूर्ण रूप से अवगत है
और भगवान परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे कोई अन्य कारण नहीं है। उन्होंने ही ब्रह्मा जी के हृदय में सर्वप्रथम वैदिक ज्ञान प्रदान किया। भगवान ही ब्रह्मा के हृदय में सर्वप्रथम वैदिक ज्ञान प्रदान किए थे। वेद मतलब आध्यात्मिक जगत का जो ज्ञान है, वो ज्ञान ब्रह्मा के हृदय में पहले भगवान ही संचार किए थे, प्रदान किए। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़े रहते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप में प्रकट होते, अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक लगते हैं। ये जगत अनेक है, ये जगत अवास्तव। अवास्तव के वर्णन करते हुए यहाँ ये दृष्टांत दिया गया है, जैसे स्थल में जल की भांति दिखाई देती है। कैसे स्थल में जल का भ्रम होता है, जैसे रेगिस्तान में जो रेगिस्तान में जो मिराज का, मिराज का हिंदी क्या है, जैसे रेगिस्तान में मिराज, मिराज बस मिराज, वैसे जिसे वैसे मृग पिशा कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में तो मृग नहीं रहता है। तो रेगिस्तान, डू यू नो ब्रजकिशोर, हाँ जल जैसा मालूम होता है। रेगिस्तान में तो रेत है, रेगिस्तान में रेत रहता है, वो रेत जब गर्म हो जाता है तब वहाँ जल जैसे मालूम होता है, जिसे मरीचिका कहा जाता है या मृग पिशा कहा जाता है। सो वहाँ असल में क्या है, असल में अग्नि है, आग है, परंतु वहाँ पानी जैसा मालूम, ऐसे वर्णन किया गया है। जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, जैसे रेगिस्तान में अच्छा असल में आग है परंतु ऐसा मालूम होता है कि वहां पानी है। जब प्यास के कारण पानी घूम रहा है रेगिस्तान में, और ऐसे मालूम होता है कि यह जो रेगिस्तान में पानी जैसा मालूम होता है, जो मरीचिका मृग तृष्णा जिसे कहा जाता है, तो उसको ये देखकर मायाग्रस्त हो जाता है। मतलब सोचते हैं कि ये असल वास्तव असल में पानी है, परंतु उसमें क्या पानी है नहीं। और वैसे ही जल में स्थल का कम होता है, जब जल में जब छाया दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो उसे मालूम होता है कि वहाँ फल कोई पेड़ है, पेड़ में फल है वो फल, परंतु असल में वास्तव वस्तु। तो ऐसे भौतिक जगत में हमारा जो स्थिति है वैसा ही माया छंद, जहाँ जो वस्तु हम भूल रहे हैं उसका प्राप्ति यहाँ कभी कभी भी नहीं हो सकता, जो हम सब भूल रहे हैं उसका प्राप्ति यहाँ कभी भी नहीं हो सकता। जैसे रेगिस्तान में
माया मृगत विषा देख कर कहते उसमें कभी हम पालन पानी नहीं हम प्राप्त हो सकेंगे और उसके पीछे दौड़ कर पीछे भाग कर हम कभी हमारा प्यास का निवारण नहीं कर सकते। तो वैसे ही ये भौतिक जगत अवास्तव है और इसका कारण भी भगवान का माया शक्ति है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक लगते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के मोह रूप से सर्वदा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं, निरंतर वास करने वाले हैं। मैं उनका इसलिए ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। भगवान ही है परम सत्य वास्तव। ये चार कारण के लिए हमें भगवान को ध्यान, भगवान के बारे में चिंतन करना चाहिए। और भगवान के बारे में चिंतन करने से क्या होगा? भगवान के बारे में चिंतन करने से हम इस भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान जो आध्यात्मिक जगत में विराज करते हैं वहां हम वापस जा सकते हैं। और वहां जाने से हम जो कुछ मांगते हैं, हम जो कुछ चाहते हैं वो हम बहुत आसानी से प्राप्त होते हैं। हम असल में हम क्या चाहते हैं? हमारा चाहना तीन प्रकार के हैं। एक है हम मरना नहीं चाहते, कोई भी मरना नहीं चाहते। हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त होना चाहते हैं और हम आनंद चाहते हैं। हम जो कुछ करते हैं वो ये तीन कारण के लिए। हम मरना नहीं चाहते हैं, हम सब कुछ जानना चाहते हैं और हम आनंद प्राप्त होना। और ये चाहना स्वाभाविक है क्योंकि वास्तव रूप में ये तीन गुण हमने हैं। असल में हमारा कभी मृत्यु नहीं होता है, वास्तविक रूप में हम पूर्ण ज्ञान हमारे हम में है और वास्तविक रूप में हम आनंदमय। हमारे ये स्थिति, हमारा स्वाभाविक स्थिति, हमारा आध्यात्मिक स्थिति स्वाभाविक रूप में ही सत चित और आनंदमय। सत का मतलब है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, चित का मतलब जो पूर्ण ज्ञानमय है, पूर्ण चेतन है और आनंदमय। ये तीन वस्तु हम ढूंढ रहे हैं परंतु इस भौतिक जगत में ये तीन वस्तु हम कभी नहीं प्राप्त हो सकते क्योंकि ये भौतिक जगत में वो सभी वस्तु विनाश, सभी वस्तु नाशवान है। ये भौतिक जगत का सब वस्तु अज्ञान में है और ये भौतिक जगत का सभी वस्तु दुखमय है। परंतु हमारा स्वाभाविक स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में हम सब चिन्मय हैं। वो चिन्मय स्वरूप में हम आनंद और वो चिन्मय स्वरूप हम तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हम भगवान के साथ हमारे संपर्क जोड़ लेते हैं। इसलिए हर समय भगवान को चिंतन करना चाहिए, भगवान को ध्यान करना चाहिए। और भगवान को ध्यान करने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान के नाम को कीर्तन करना, जिसे महामंत्र कहा जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये महामंत्र हर समय जपना चाहिए, हर समय कीर्तन करना चाहिए, हर समय ऐसे रूप से भगवान को ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हमारे गुरु भाई महामंत्र प्रभु आए हैं हमारे ये आज के अनुष्ठान में योगदान करने के लिए। महामंत्र प्रभु वृंदावन से आए हैं, उनको हम सब स्वागत करते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि महामंत्र प्रभु की श्रील प्रभुपाद की संगीत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे।
परंतु जो दिन जो अर्थ विग्रह जो है रास्ता विग्रह वो भगवान एक ही जगह पर विराजमान रहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि बहुत तुरंत ही हमारा मूल विग्रह का प्रतिष्ठा यहाँ होगा। तो जो विग्रह यहाँ आएंगे और जिसके जिनके विजय विग्रह का प्रतिष्ठा हो रहा है इस अनुष्ठान के माध्यम, तो विग्रह का नाम है श्री राधा मदन मोहन जी। श्री कृष्ण भक्ति का तीन अध्याय है, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का मतलब भगवान के साथ संपर्क स्थापन करना। तो ये संबंध अधिदेवता है श्री श्री मदन मोहन। और अभिधेय जिस प्रकार से हम भगवान के भक्ति भगवान के साथ हमारे प्यार का संबंध प्रतिष्ठा कर सकते हैं वो तो है अभिधेय तत्व। और अभिधेय देव है, अभिधेय विग्रह है गोविंद देव श्री श्री गोविंद देव। और प्रयोजन जो है प्रेम कृष्ण प्रेम, और प्रेम के विग्रह है श्री श्री गोपीनाथ। तो ये मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ ये हमारे तीन विग्रह के मूल विग्रह मुख्य मुख्य विग्रह है। तो आज यहाँ हमारा मदन मोहन जी का विग्रह का प्रतिष्ठा हुआ। हमारे साथ श्रीमती राधा रानी भी विराजमान है। जहाँ भगवान है वहाँ भगवान का लादिनी शक्ति के मूर्तिमती प्रकाश श्रीमती राधा रानी भी रहते हैं। तो आज श्रीमती राधा रानी के साथ श्री मदन मोहन जी का स्थापना या विग्रह का प्रतिष्ठा यहाँ हो रहा है। हम अब यज्ञ शुरू करेंगे। यज्ञ का मतलब है भगवान को अर्पण करना। यज्ञ के माध्यम हम भगवान के जो कुछ अर्पण करना चाहते हैं वो अर्पण कर सकते हैं। और ये यज्ञ भगवान से अभिन्न है। भगवान का जो श्री विग्रह का अभी अभिषेक हुआ और ये जो यज्ञ अग्नि है या यज्ञ अनुष्ठान जो है ये भी भगवान स्वयं ही है। यज्ञेश्वर है भगवान श्री विष्णु, यज्ञेश्वर विष्णु। तो ये यज्ञ के माध्यम हम हमारे सेवा करने का अवसर प्रार्थना हम करते हैं भगवान के पास। हम भगवान के पास हार्दिक भावना लेकर ऐकांतिक भावना लेकर भगवान के पास हम प्रार्थना करते हैं ताकि वो कृपा करके हमें उनको सेवा करने का अवसर दें, सेवा करने का सुयोग प्रदान करें, और हमारे अक्षमता होते हुए भी हमारी सेवा कृपा पूर्वक उन्हें ग्रहण करें। प्रार्थना के साथ हम योग का अनुष्ठान शुरू करते हैं। जब हम कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं उस समय भगवान की महिमा हम कीर्तन करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा यह सारे वातावरण पवित्र हो जाता है और हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाता है। तो इसके कारण हम आचरण करते हैं जिसे कहा जाता है विशुद्धिकरण प्रक्रिया। उसका मंत्र है, हम सब वो मंत्र एक साथ बोलेंगे, बल्कि पहले हम उसको अर्थ विश्लेषण करके हम एक साथ बोलेंगे। ये मंत्र है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा जे स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्य अभ्यन्तरः शुचिः। इसका अर्थ है, अपवित्र पवित्रो वा, हम या कोई भी व्यक्ति पवित्र हो या अपवित्र हो, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में वो हो, परंतु जब स्मरित पुंडरीकाक्षं, जो पुंडरीकाक्षं मतलब कमल नयन, परमेश्वर श्री भगवान को स्मरण करते हैं, जो स्मरित पुंडरीकाक्षं सो बाह्य अभ्यंतरः सूची ही, वो बाहर से और अंदर से, बाहर से और अंदर से विशुद्ध हो जाता है। तो सबसे बढ़िया प्रक्रिया विशुद्ध होने का, शुद्ध होने का सबसे बड़ा तरीका है ये भगवान को याद करना। भगवान को याद करने से हम बाहर से और अंदर से पवित्र हो जाता है। तो हम एक साथ इस मंत्र को उच्चारण करेंगे, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्य अभ्यन्तरः शुचिः। श्री विष्णु। अब हम भगवान की महिमा कीर्तन करते हुए ब्रह्म संहिता पाठ करेंगे। तो ब्रह्म संहिता स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की महिमा कीर्तन,
ये ब्रह्म संहिता का ये पंचम अध्याय है। बाकी ब्रह्म संहिता लुप्त हो गए हैं, उसको हम उसे हमें मिल नहीं रहा है, परंतु ये जो पंचम अध्याय है, इस पंचम अध्याय में, ब्रह्म संहिता का पंचम अध्याय में ब्रह्मा जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण का महिमा कीर्तन किए हैं, और श्री कृष्ण के साथ और सबको क्या संपर्क है, ये भौतिक जगत का क्या संपर्क है, जीव के साथ क्या संपर्क है, स्वर्गलोक का देव देवियों का साथ क्या संपर्क है, भगवती दुर्गा के साथ क्या संपर्क है, देवादिदेव महादेव शिवजी के साथ क्या संपर्क है, भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों के साथ भगवान का क्या संपर्क है, इस बारे में वर्णन किए हैं। तो इसलिए हम ये ब्रह्म संहिता अब पाठ करेंगे। अगर जो ब्रह्म संहिता जानते हैं वो मेरे साथ साथ पाठ कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते, हर ब्रह्म संहिता ये जो 29 से हम 55 श्लोक का अंत में चतुर्थ लाइन में ये कहा गया है कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। इसका मतलब है, मैं आदि पुरुष परमेश्वर भगवान गोविंद श्री कृष्ण का भजना करता हूं। तो ये लाइन आप सब एक साथ कीर्तन